वासुदेवाया, क्या करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 75। अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। सबने निकाल लिया, मेरे पीछे बोलिए। व्यास प्रसादाश्रुतवान, व्यास प्रसादाश्रुतवान एतन् गुह्यम् अहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादाश्रुतवान् एतन् गुह्यम् अहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। शब्दार्थ बोलिए। व्यास प्रसादात्, व्यास देव की कृपा से, श्रुतवान सुना है, एतत् इस गुह्यम गोपनीय अहम मैंने परम परम योगम योग को योग ईश्वरात योग के स्वामी कृष्णात कृष्ण से साक्षात साक्षात कथयतः कहते हुए स्वयं स्वयं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दं श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्दं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
श्लोक फिर से समझेंगे। संजय कह रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि भगवत गीता का जो संवाद है अर्जुन और कृष्ण का वो समाप्त हो चुका है। तो संजय कह रहे हैं किससे? संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? व्यास की कृपा से मैंने ये श्रवण किया। साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं उससे मैंने श्रवण किया। संजय कह रहे हैं व्यास देव की कृपा से। व्यास देव संजय के कौन है? गुरु हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद के व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि कृष्ण को समझने की विधि क्या है? गुरु के माध्यम से। प्रत्यक्ष रूप से समझने की विधि नहीं है, है? जैसे कि आपकी आंखें खराब हैं, है ना, तो आप चश्मा लगा करके ही आप देखते हो, है कि नहीं? अगर बिना चश्मा लगाए आप कहो वे बिना चश्मा लगाए मैं देखूंगा, है ना, तो आप नहीं देख सकते कुछ भी, है कि नहीं? चश्मा लगाना जरूरी है। और चश्मा लगा करके आप चश्मा को नहीं देखते, किसको देखते हो? है? जो देखने लायक वस्तु उसको देखते हो। उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से आप किसको समझते हो? कृष्ण को समझते हो, है ना। तो गुरु माध्यम है, जैसे चश्मा माध्यम है। लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान को जानना, भगवान को समझना। लेकिन बिना गुरु के आप भगवान को नहीं समझ सकते, जिस प्रकार से बिना चश्मा के आप देख नहीं सकते हैं, है ना। तो चश्मा की आवश्यकता है। हाँ, तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं गुरु स्वच्छ माध्यम है। स्वच्छ माध्यम जैसे चश्मा, जब साफ होता है तो फिर आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है, चश्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर चश्मा गंदा है तो फिर आपको चश्मा दिखाई पड़ेगा लेकिन आपको और कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, जो देखना चाहते वो नहीं दिखाई देगी, है ना। उसी प्रकार से गुरु जो है ना, अगर शुद्ध भक्त होता है तो वो स्वच्छ माध्यम होता है, क्या? भगवान को समझने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। अनुभव किसका होता है? भगवान का। प्रत्यक्ष अनुभव भगवान का होता है, है? जैसे कि ये करताल में देख रहा हूं चश्मा के द्वारा तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है करताल, है कि नहीं? जबकि आंख में चश्मा लगा है तो मैं देख रहा हूं करताल को प्रत्यक्ष, चश्मा नहीं देख रहा हूं, है ना। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव कृष्ण का होता है लेकिन माध्यम गुरु है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं गुरु परंपरा का यही रहस्य है। गुरु परंपरा का ये रहस्य है, है ना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई गुरु से तो हमको बाधा पड़ती है भगवान के भजन में, हम तो सीधे भगवान का भजन करेंगे, गुरु के चक्कर में क्यों पड़े, है ना। गुरु के चक्कर में फिर ये होता है कि भगवान के भजन में बाधा पड़ेगी कि भगवान का भजन करें या गुरु का भजन करें, है ना। तो ये तो ठीक नहीं है, हम तो सीधे भगवान का भजन करेंगे। इस प्रकार की जो धारणा है लोगों के अंदर, लेकिन उसी प्रकार से जब आंखें खराब हैं आप कहो भाई चश्मा के चक्कर में कौन पड़े, है ना। तो हमने भी बहुत कोशिश की कि बिना चश्मा के काम चल जाए, है ना, ये काम नहीं चला। अब चश्मा को हमें रखना पड़ता है, साफ करना पड़ता है और इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। हालांकि एक कुछ तो भार लगता है ना, लेकिन चश्मा जरूरी है देखने के लिए। उसी प्रकार से गुरु का भार होता है शिष्य के ऊपर, गुरु का मतलब है भारी, तो गुरु का जो भार है वो शिष्य को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जरूरी है ये भार, ये चश्मा का भार जरूरी है, है ना। ये तो कौन चश्मा चाहता है ना, बिना चश्मा के जब तक काम चलता है चश्मा कोई नहीं चाहता लगाना, एक भार है, है ना। तो जिस प्रकार से चश्मा का भार जरूरी है उसी प्रकार से गुरु का भार जरूरी है भगवान की प्राप्ति के लिए, है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है जैसा अर्जुन ने किया, है ना। क्या मतलब, जो गुरु है वो भगवत गीता यथावत बताएगा, अपनी बात नहीं जोड़ेगा, अपनी बात नहीं घुसेड़ेगा, है कि नहीं। जैसे चश्मा अगर मैला है तो उसमें जो कुछ दाग हैं चश्मे में, है, या कुछ धब्बे हैं चश्मे में, तो फिर वो जो ना आपको देखने में बाधा डालेंगे, सामने किसी व्यक्ति को देखने में बाधा डालेंगे, किसी चीज को पढ़ने में बाधा डालेंगे, है ना। उसी प्रकार से गुरु जो है ना अगर शुद्ध नहीं अपनी बात जोड़ता है तो फिर दिक्कत होगी क्या भगवान को समझने में, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, संसार भर में अनेक योगी हैं लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। हाँ, इस श्लोक में क्या कहा है संजय ने, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कृष्णात। ये योग जो है कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताया, और कृष्ण क्या है, योगेश्वर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं, इस संसार भर में अनेक योगी हैं, अनेक योगी हैं लेकिन कृष्ण क्या है, योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। बिल्कुल ठीक, योगेश्वर की शरण में आप जाओगे तो बिना कुछ किए आप सबसे बड़े योगी बन जाओगे, है ना, संपर्क से, है कि नहीं। जैसे राजा है, राजा का जो ना कोई पुत्र अगर बन जाए तो अपने आप राजा बन जाएगा, राजकुमार बन जाएगा, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाएगा, केवल राजा का पुत्र बनने से, है कि नहीं, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। फिर उसी प्रकार से योगेश्वर की शरण लेने से आप सबसे बड़े योगी बन जाओगे बिना कुछ योग साधना किए। तो बड़े बड़े योगी हैं, बहुत तीव्र योग साधना करते हैं, है ना, लेकिन कोई व्यक्ति इतना बड़ा योगी नहीं बन सकता है। जितना बड़ा योगी कौन है, जो कृष्ण की शरण लेगा, क्योंकि वो योगेश्वर है कि नहीं। कोई भी मनुष्य जो है कितना भी परिश्रम करे लेकिन वो जो है राजा के लड़के के बराबर धनी नहीं बन सकता, और राजा का लड़का कुछ परिश्रम नहीं करता है और धनी बन जाता है। क्यों, राजा का लड़का है इसलिए। कोई कितना भी परिश्रम करे, कितना मेहनत करे, लेकिन राजा के लड़के के बराबर धनी कभी नहीं बन सकता। उसी प्रकार से कोई कितना भी योग साधन करे, परिश्रम करता है, तपस्या करता है, लेकिन कभी योगी नहीं बन सकता है उतना बड़ा, जितना बड़ा योगी कौन है, जो योगेश्वर की शरण में जाए। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है। तो सबसे बड़ा योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, सबको याद होना चाहिए। कितने लोगों को याद है छठे अध्याय का अंतिम श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषाम, एक दो बस तीन, अच्छा चार। तो ये श्लोक जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब योगियों में सर्वोच्च योगी कौन है, जो कृष्ण में अपना मन लगाता है, कृष्ण का भजन करता है, तो सबसे बड़ा योगी हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे गोपियां अशिक्षित हैं, है? मूर्ख हैं, मूर्ख स्त्रियां हैं गोपियां, उन्होंने स्कूलों में कॉलेजों में कुछ पढ़ाई लिखाई थोड़ी करी है, है कि नहीं। गांव की स्त्रियां हैं, है कि नहीं, क्या है वो मंथन करती हैं, मक्खन दूध दही का मंथन करती हैं, गौओं की सेवा करती हैं, और क्या करती हैं, है ना। ये सर्वोच्च योगी हैं, सर्वोच्च योगी हैं। क्यों? कि कृष्ण में अपना मन लगाए हैं, इसी सर्वोच्च योगी हैं, है ना। तो ये जो ना भगवद गीता का जो श्लोक है ये बहुत रहस्यपूर्ण है, सबसे बड़ा योगी वो। तो कृष्ण को योगेश्वर कहा, और ये योग जो है योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। यहाँ व्यास की बात आई ना, व्यास की बात आई है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यास देव के गुरु कौन है? नारद जी। और नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी हैं, या आप कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण से साक्षात नारद जी मिलते रहते हैं हमेशा, और कृष्ण से सीधे भी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, है? तो एक दृष्टि यह भी कहा जा सकता है कि नारद जी कृष्ण के शिष्य हैं, है ना। आगे, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं। व्यास देव भी अर्जुन के समान प्रामाणिक हैं। अर्जुन ने साक्षात कृष्ण से श्रवण किया, और व्यास देव ने नारद जी से श्रवण किया, और नारद जी ने कृष्ण से श्रवण किया, है ना। तो कोई अंतर नहीं है व्यास देव में और अर्जुन में, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं, है ना। संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अब संजय के गुरु व्यास देव, और व्यास देव के गुरु नारद जी, और नारद जी के गुरु श्री कृष्ण हैं, गुरु परंपरा। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी, और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। व्यास जी की कृपा से संजय को क्या हुआ? दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, है ना, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तभी हम कुछ इसके विषय में बताएंगे वो घटना, कि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान की। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। कौन समझ सकता है? जो कृष्ण से प्रत्यक्ष श्रवण करता है। अब प्रत्यक्ष श्रवण करने का मतलब अब ये नहीं है कि अर्जुन की तरह कृष्ण आपको भी उपदेश करेंगे गीता का, ऐसा नहीं है। बल्कि तो कृष्ण से साक्षात श्रवण करने का मतलब क्या है कि गुरु परंपरा में श्रवण करना, गुरु परंपरा में श्रवण करना, ये कृष्ण से साक्षात श्रवण करने का जो है मतलब यही है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतः उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। क्योंकि तो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है क्या, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुए ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। तो परंपरा बहुत आवश्यक है, गुरु परंपरा। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षता समझ सकने के लिए भाग्यशाली थे, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सके। अर्जुन के समान भाग्यशाली संजय भी हैं, है? क्यों? क्योंकि संजय ने साक्षात श्रवण किया, कृष्ण के मुख के निकले शब्दों को साक्षात श्रवण किया। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षता सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं, है ना। तो इस कौन में जो है व्यास पूजा होती है कि नहीं? प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होती है, कब? जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद की व्यास पूजा होती है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी व्यास पूजा होती है, भक्ति विनोद ठाकुर की व्यास पूजा होती है, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की व्यास पूजा होती है, और वर्तमान जो गुरु हैं उनके भी शिष्य जो है ना अपने अपने गुरुओं की व्यास पूजा मनाते हैं। तो व्यास पूजा का मतलब यही है कि जो इस समय जितने भी गुरु हैं वो व्यास देव के संदेश को ही बता रहे हैं, है ना, अपना कोई संदेश नहीं बता रहे हैं, इसलिए व्यास पूजा चलाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है और अब हम कुछ व्यास देव के बारे में और भी कुछ चर्चा करेंगे। व्यास देव जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है, व्यास जी जो है एकांत में बैठे हैं, मन एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठे हैं। कहां पर? सरस्वती के तट पर। सरस्वती के तट पर जब सूर्योदय हुआ तो व्यास जी जो है स्नान करके एकांत में बैठे हैं। सकदाचिन सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम सुचि विविक्त एक आसीन उदिते रवि मंडले। महर्षि व्यास देव ने देखा क्या? युग के कर्तव्यों में विरोध देखा। काल क्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण ऐसा विरोध होता है। परावरज्ञ सरिषि कालेना व्यक्त रंगताम योग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भवि युगे युगे। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं व्यास देव जैसे ऋषि मुक्त जीव होते हैं, अतएव वे भूत और भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं, अतएव वे कलियुग की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन बिता सके। इस कलियुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं, अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो पाते। तो व्यास जी कैसे हैं? परम ज्ञानी ऋषि हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से काल के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं जतन कृतम् अश्रद्धानां सत्वान् दुर्मेधान् रसितायुसहं दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषां सर्ववर्णाश्रमाणां यन् दद्योहितम् अमोघैत्रीं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं महर्षि व्यास देव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार एक ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र और सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले लोग सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से ये सब देख सकते हैं। अब व्यास जी ने क्या देखा? कि वेद वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच में फैल सकें। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्षे वैदिकम विदधान यज्ञ संतत्य वेदमेकम चतुर्विधम। इसलिए व्यास जी को क्या कहा जाता है? वेद व्यास। वेद व्यास का मतलब क्या है? जो वेदों का विस्तार करे, एक वेद से चार वेद बनाए। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के चार पृथक विभाग किए गए। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के चार पृथक विभाग किए किसने? व्यास जी ने। लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। जो पुराण है ये पांचवा वेद कहलाता है। ऋग्यजुसामथर्वाख्या वेदाश्चत्वारे उद्धृताम् इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। वेदों के चार विभाग हो जाने के बाद ऋग्वेद के आचार्य बने कौन? पैल मुनि, व्यास जी के शिष्य पैल, वो मुनि वे बने ऋग्वेद के आचार्य। और जैमिनी बने साम वेद के आचार्य, जैमिनी और वैशंपायन बने यजुर्वेद के आचार्य, ये सब व्यास जी के शिष्य हैं, पहल जैमिनी और वैशंपायन। तत्र द्वे गए धरा पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुसाम मुतम। अच्छा अब और कौन रह गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु मुनि, सुमंतु। तो चार वेदों के चार आचार्य हुए, व्यास जी के चार शिष्य। अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु मुनि और मेरे पिता रोमहर्षण सूत गोस्वामी, उग्रसभा नाम के जो सूत हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पिता रोमहर्षण बने पुराणों के आचार्य। 18 पुराण व्यास जी ने रोमहर्षण सूत को प्रदान किए। अथर्वांगे रसामासीन सुमंतुर्दारुणो मुनीन इतिहास है पुराणाम नाम, इतिहास है पुराणा नाम पिता में रोमहर्षण। इन सब विद्वानों ने अपने पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी, बहुत शाखाएं बन गई। जैसे व्यास जी ने एक वेद के चार विभाजन कर दिए, अलग अलग शिष्यों को दिए, फिर उन शिष्यों ने भी उन वेदों की भी कई शाखाएं बनाई और उन शिष्यों को दी, फिर उन्होंने अपनी अपनी शाखाओं की और उप शाखाएं बनाई, उनके शिष्यों को दी। इस प्रकार से एक वेद के बहुत शाखाएं प्रशाखाएं बन गई। ऋषियो वेदम स्वम स्वम व्यसन्ने कदम शिष्य प्रशिष्य सच्चिष्य वेदास्ते शाखिनो भवन। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको धारण कर सके। तयेव वेदा दुर्मेधैर धार्यन्ते पुरुषैर यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणे वत्सलः। अब व्यास जी ने महाभारत की रचना की, क्यों? महर्षि व्यास ने अनुकंपावश ये हितकर समझा कि ये मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों और द्विजबंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। व्यास जी की बहुत कृपा है, महाभारत की रचना की उन्होंने। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीना स्तुति गोचराम कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवे देह इति भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र और उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र ये आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार क्या है, भगवद्गीता सन्निविष्ट है। भगवद्गीता महाभारत में है और ये वेद का सार है। अल्पज्ञ लोग सिद्धांत की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतः वेदों के सिद्धांत का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद्गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव और भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतः उन्होंने इस युग की पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद्गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ये आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत सिद्धांत तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है, केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। भगवान की भक्ति स्नातकोत्तर है। स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है ना। ग्रेजुएशन में क्या है, वेद है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भगवान की भक्ति है, स्नातकोत्तर। ये महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है वेदों की वो क्या है, भगवान की भक्ति, उसके परमाचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। अब व्यास देव के बारे में प्रभुपाद ने और भी लिखा है, इनको कई नामों से पुकारा जाता है, कृष्ण भी इनको कहा जाता है, व्यास देव को कृष्ण भी कहा जाता है, क्यों सांवले रंग के हैं इसलिए, और कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, और फिर द्वैपायन भी कभी कभी कहा जाता है, द्वैपायन और सत्यवती सुत कहा जाता है, क्यों सत्यवती के पुत्र हैं, पाराशर्य कहा जाता है, क्यों पराशर मुनि के पुत्र हैं इसलिए पाराशर्य, और पराशरात्मज, आत्मज का मतलब पुत्र, तो पराशरात्मज भी कहे जाते हैं, बादरायण कहे जाते हैं, बादरायण, अयन का मतलब स्थान निवास, और बादर का मतलब है बेर के वृक्षों का वन, बद्री वन, बादरायण और वेद व्यास, ये कई नाम हैं इनके। ये महान सेनापति पितामह भीष्म देव के पिता महाराज शांतनु से अपनी माता सत्यवती के गर्भ से उनकी सगाई होने के पूर्व ही महामुनि पराशर द्वारा उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना, भीष्म की माता सत्यवती, ठीक है ना, और भीष्म के पिता शांतनु, तो जब सत्यवती शांतनु का विवाह नहीं हुआ था तो विवाह के पहले ही पराशर मुनि के द्वारा ये उत्पन्न हुए थे व्यास जी। इसमें कोई दोष नहीं है कि पराशर मुनि ने